डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड्स। व्याख्यान 11 नुजी। 2024 डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 11 है नुजी। अपने अंतिम व्याख्यान में हमने बेबीलोनियाई बाढ़ वृत्तांतों और बाइबिल में बाढ़ वृत्तांतों के बारे में बात की। जैसा कि हम ऐसा कर रहे थे, हम मदद नहीं कर सके, लेकिन ध्यान दिया कि बाढ़ के बाइबिल वृत्तांत और मेसोपोटामिया वृत्तांत के विभिन्न प्रतिपादनों के बीच कुछ बहुत ही चौंकाने वाली समानताएं हैं। निःसंदेह इसमें पर्याप्त अंतर भी हैं। यह घटना निश्चित रूप से उस पहेली का प्रतिनिधित्व करती है जिसका सामना हम पृष्ठभूमि के क्षेत्र में करते हैं। समस्या यह है कि समानताएं अक्सर असमानताओं से मेल खाती हैं। जैसे ही हम बाइबल पर प्रकाश डालने के लिए प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों का उपयोग करने पर चर्चा करते हैं, हमारे सामने इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि निर्विवाद समानताओं के साथ साथ मतभेदों से कैसे निपटा जाए। यह समस्या के लिए उन परीक्षण मामलों में से एक है। तीन प्रस्ताव यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो दस्तावेज इतने समान कैसे लग सकते हैं। पहला यह कि इब्रानियों ने बाढ़ की अपनी अवधारणा मेसोपोटामिया से उधार ली थी। दार्शनिक रूप से इसकी संभावना नहीं है। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मेसोपोटामिया में बाढ़ का विवरण जैसे जैसे पुराना होता गया, उसका आकार सामान्य सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पत्ति 6 से 8 घटना के सभी प्राचीन संस्करणों में सबसे छोटा है। दूसरी ओर यह कालानुक्रमिक रूप से दूसरों की तुलना में बहुत अधिक जटिल है। इसमें 5 तिथियां हैं और उनके पास एक भी नहीं है। यह 7, 40 और 150 दिनों की 6 अलग अलग अवधियों को संदर्भित करता है, जबकि गिलगमेश महाकाव्य में 7 दिनों में से केवल 2 या 3 दिन हैं। पूरे अतरासीस में 17 कालानुक्रमिक डेटा हैं और गिलगमेश महाकाव्य में 13 हैं। फिर भी बाइबिल, जो उन दो अन्य दस्तावेजों की तुलना में काफी छोटा है, में 16 हैं। खैर, हम जो इंगित कर रहे हैं वह अंतर संबंधों को समझाने की इस समस्या में सिर्फ एक छोटी सी समस्या है, लेकिन कालानुक्रमिक समस्याएं हैं। यदि मूसा 1400 में लिख रहा था और वह मिस्र या सिनाई रेगिस्तान में लिख रहा था, तो उसे मेसोपोटामिया में बाढ़ के वृत्तांतों के बारे में कैसे पता चला? यह विचार प्रस्तुत करना कठिन है कि मूसा ने किसी लिखित दस्तावेज से उधार लिया होगा, क्योंकि इस विशेष समय में लिखना पेशेवरों के हाथ में रहा होगा। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि ऐसा लिखित में कैसे हुआ होगा। निःसंदेह यह संभव है, हालांकि यह पूरी तरह से अटकलबाजी ही रहेगी कि यह मौखिक रूप से हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन दुनिया में शायद लेखन प्रणाली की जटिलता के कारण वे चीजों को मौखिक रूप से पारित करने की अधिक संभावना रखते थे। इसलिए यह संभव है कि मूसा ने बाढ़ के वृत्तांत के बारे में सुना था, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि मूसा ने उस दस्तावेज से क्यों उधार लिया होगा जो इतना बुतपरस्त था, अगर वह उस कहानी में मौजूद किसी भी चीज पर विश्वास करता जो हमारे पास उत्पत्ति 6 से 9 में है। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन कालानुक्रमिक कारणों के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी यह असंभावित लगता है। यदि मूसा ने मेसोपोटामिया के लोगों से उधार लिया होता तो निश्चित रूप से यह समानताएं स्पष्ट करता, लेकिन यह वास्तव में मतभेदों की व्याख्या नहीं करता। और आदर्श रूप से हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो समानता और अंतर दोनों को समझा सके। इसलिए यह असंभव लगता है कि मूसा ने मेसोपोटामिया के खाते से उधार लिया होगा। यदि वास्तव में कोई ईश्वर है और यह ईश्वर मानव जाति को अनगिनत तरीकों से नियंत्रित करता है, तो यह असंभव नहीं है कि ईश्वर ने मूसा को इस दस्तावेज का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारे पिछले व्याख्यान में देखी गई समानताओं के अलावा इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। इसलिए कुछ रूढ़िवादी शायद यह तर्क देना चाहेंगे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने बाइबल से उधार लिया था। खैर, एक बार फिर यह एक विचार है, लेकिन अगर हम इस विचार को देखना शुरू करें और खुद से सवाल पूछें, तो यह कैसे हो सकता है? मेसोपोटामियावासी, जो 600 से 900 मील दूर रहते थे, उन्होंने इब्रानियों से विवरण कैसे उधार लिया होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि मूसा स्पष्ट रूप से इसे लिखने वाले पहले व्यक्ति थे और मूसा कभी मेसोपोटामिया नहीं आए थे। इसलिए प्रस्तावित परिदृश्य को समझना मुश्किल होगा जिसमें मेसोपोटामिया के लोगों ने इसे उधार लिया होगा। कालानुक्रमिक समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यदि मूसा ने 1400 में लिखा था, तो हमारे पास मेसोपोटामिया के खाते हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं। तो मूसा अत्राहसीस और गिलगमेश महाकाव्य के लिखित संस्करणों के 200 से 300 साल बाद लिख रहा है, तो यह कालानुक्रमिक रूप से कैसे काम करेगा? और एक बार फिर उधार लेने की संभावना समस्या के केवल एक पक्ष समानताओं का उत्तर देती है, लेकिन मतभेदों की समस्या का कम। तो मैं जो अनुमान लगाऊंगा वह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन मैं जो सुझाव दूंगा वह एक छोटी सी योजना है, और मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं कुछ हद तक मितव्ययता के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा। यह सिर्फ सोचने का प्रस्ताव है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक वैश्विक बाढ़ आई थी, या कम से कम एक बाढ़ जिसने मेसोपोटामिया बेसिन को कवर किया था। मैं जो प्रस्ताव रखूंगा वह यह है कि संभवतः दोनों वृत्तांत, बाइबल वृत्तांत और मेसोपोटामिया वृत्तांत, एक ही घटना को याद करते हैं। मैं जो प्रस्ताव रखूंगा वह यह संभावना है कि दैवीय मार्गदर्शन या प्रेरणा के माध्यम से मूसा को अंततः उस बाढ़ की सही स्मृति प्राप्त हुई, जबकि बेबीलोनियों को भी शायद बाढ़ की घटना याद थी, लेकिन उन्होंने इसे पौराणिक कथाओं और अन्य ऐतिहासिक अशुद्धियों के साथ विकृत कर दिया। दूसरे शब्दों में, वे दोनों बाढ़ को याद करते हैं, लेकिन बाइबल वृत्तांत ने इसे सही ढंग से याद किया, और मेसोपोटामिया वृत्तांत ने इसे आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से विकृत तरीके से याद किया। अब बेशक यह केवल एक प्रशंसनीय व्याख्या है, लेकिन इसमें आकर्षक कारकों में से एक यह है कि इस तरह की व्याख्या बताती है कि हमारे बीच समानताएं और अंतर क्यों हैं। मेसोपोटामिया के विवरण में इसका कुछ भाग ठीक ठीक याद था और कुछ गलत याद था। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे पास किसी भी स्तर की निश्चितता, शायद संभावना के साथ यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि समानताओं और अंतरों को कैसे समझाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर यह जवाब दिया जाता है कि उधार लिया जा रहा है। उधार लेना निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन जब हमारी संस्कृतियां इसराइल और बेबीलोन से बहुत दूर हैं, तो उधार लेने के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं क्रिटिकल थ्योरी को क्रिटिकल थ्योरी में समझता हूँ। अधिकांश दस्तावेज जिन्हें हम बाइबल कहते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन में निर्वासन में लिखे गए थे। निश्चित रूप से ऐसी संभावना है कि ऐसा कुछ घटित हो सकता था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह समझने के लिए सावधान करना चाहूंगा कि जब इसराइल बेबीलोन में निर्वासन में था और इसराइल ऐसे दस्तावेजों से प्रभावित हो सकता था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ था। तो यह भी सैद्धांतिक है, जैसे ये सभी अन्य प्रस्ताव हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना तो, जैसा कि हम इसे देखते हैं, हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे उपजाऊ वर्धमान में एक महान बाढ़ की परंपरा थी जिसने उस युग की दुनिया को नष्ट कर दिया था। बाइबल इसे याद रखती है, मेसोपोटामिया के लोग इसे याद रखने का दावा करते हैं, और इसलिए हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। हम पुराने बेबीलोनियन काल के दस्तावेजीकरण के अपने दूसरे स्रोत की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम नुजी कहते हैं, या कभी कभी इसे नुजू गोलिया कहा जाता है। ये गोलियां ज़ाग्रोस पहाड़ों की तलहटी में नुजी में एक साइट से हैं। जैसे ही मैं अपना नक्शा खींच सकता हूँ, यहाँ हम चलते हैं, मैं आपको लगभग दिखा सकता हूँ कि नुजी कहाँ है। इसलिए यदि हम नुजी को देख रहे हैं तो नुजी यहीं इस क्षेत्र में कहीं न कहीं ठीक ही होगा। यहाँ ज़ाग्रोस पर्वत हैं, याद रखें कि ये कुछ गंभीर पर्वत हैं, और नुजी ठीक यहीं था, ज़ाग्रोस में जेड और ए के करीब, और इसलिए यह नुजी की साइट है और यही वह क्षेत्र है जिसके बारे में हम इन गोलियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाई गई 1925 से 1931 के वर्षों में अमेरिकन स्कूल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च में। जब आप असोर जैसा संक्षिप्त नाम देखते हैं और आप नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी कक्षा के नोट्स की शुरुआत में ही मेरे पास कई हैं जिन पेजों पर ये वर्णानुक्रम में हैं। इसलिए आपको बस कक्षा नोट्स की शुरुआत में जाना है, वर्णानुक्रम में असोर को देखना है, और यह आपको बताएगा कि यह अमेरिकन स्कूल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च है। इसने उस स्थान की खुदाई की जिसे वे नुजी के रूप में पहचानने में सक्षम थे। जिस वस्तु की आप खुदाई कर रहे हैं उसका नाम पहचानना हमेशा आसान नहीं होता है। वहां हजारों गोलियां मिली जिन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ पितृसत्तात्मक घटनाओं के संबंध में तुरंत विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। नुजी सामग्रियों का शास्त्रीय उपयोग, और कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं शास्त्रीय उपयोग कहता हूँ तो मेरा मतलब यह है कि नुजी की गोलियों ने उत्पत्ति की पुस्तक में कई कहानियों की समझ को कैसे प्रभावित किया। इन नुजी ग्रंथों का शास्त्रीय उपयोग उत्पत्ति की पुस्तक पर एंकर बाइबल में एफ्रेम स्पाइसर की टिप्पणी में पाया जाता है। 1935 से 70 के दशक की शुरुआत तक नुजी में समान रीति रिवाजों के आधार पर उत्पत्ति में पितृसत्तात्मक कहानियों की ऐतिहासिकता के लिए बहस करना विद्वानों के बीच काफी फैशनेबल था। अब शायद मेरे श्रोताओं में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी शिक्षा है कि वे मेरे द्वारा अभी दिए गए बयान से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो चलिए मैं इसे आपके लिए इंगित करता हूँ। हम आज सुबह लगभग 8 बजे यहाँ हैं, और इसलिए हम इंजन को धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने सही पढ़ा कि आलोचनात्मक विद्वान उत्पत्ति की पितृसत्तात्मक कहानियों में से कुछ कहानियों की ऐतिहासिक वैधता पर बहस करने के लिए नुजी के दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे। आज की दुनिया में हम आलोचनात्मक समुदाय की ऐतिहासिक सटीकता को नकारने के आदि हो गए हैं, विशेषकर उत्पत्ति की पुस्तक की। तो हम खुद से सवाल पूछते हैं, अच्छा यह कैसे हुआ और ऐसा क्यों होगा? खैर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नुजी टैबलेट का मुख्य या प्रमुख विषय क्षेत्र नुजी पाठ में कई गोद लेने की कहानियों के आसपास केंद्रित है। गोद लेने की इन कहानियों को फिर उत्पत्ति की कहानियों में पढ़ा गया। आइए देखें कि क्या मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। सबसे पहले, जब इब्राहिम ने एलियाजर को गोद लिया था तो उस कहानी को नुजी के प्रकाश में समझाया गया था, भले ही पाठ यह नहीं कहता है कि इब्राहिम ने एलियाजर को गोद लिया था। एलियाजर उसका वफादार माजरडोमो, उसका वफादार मुख्य दास था। पाठ में यह कभी नहीं कहा गया है कि उसे इब्राहिम द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन चूंकि गोद लेने का प्रभाव नुजी पर हावी था, इसलिए इसे उस कहानी में पढ़ा गया। इसका प्रयोग विशेष रूप से जैक बलाबान की कहानियों में किया गया है। यदि आपको कहानियां याद हैं, तो जैकब कथित तौर पर एक पत्नी पाने के लिए मेसोपोटामिया गया था, और वहां उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके पास उससे भी कम नैतिक निष्ठा है, लाबान। तो यदि आपको कहानी याद है तो जैकब को राहेल से प्यार हो गया और उसने उसके लिए 7 साल तक काम किया। प्रीलेक्ट्रिक युग में शादी की रात लाबान ने अपनी दूसरी बेटी लिया को देकर उसे बेवकूफ बनाया, और जैकब इस बात से बेखबर था। ऐसा अगली सुबह तक होता है जब वह जागता है और उसे पता चलता है कि उसकी शादी राहेल से नहीं बल्कि लिया से हुई थी। खैर, उन्होंने अगले 7 वर्षों तक काम किया और यह पाठ बाइबल के आनंदमय अंशों में से एक है। पाठ हमें बताता है कि राहेल के प्रति उसका प्रेम इतना महान था कि 7 वर्ष एक दिन से अधिक प्रतीत होते थे, और इसलिए अगले 7 वर्षीय खंड के अंत में उसने राहेल से शादी करने के लिए आर्थिक रूप से अधिकार अर्जित कर लिया था। लेकिन क्योंकि याकूब को भगवान द्वारा समृद्ध किया जा रहा था, तब लाबान को उससे ईर्ष्या होने लगी और इसलिए संघर्ष उत्पन्न हुआ, और अंततः पूरे परिवार यानी याकूब और राहेल और लिया और उनके बच्चों ने लाबान से भागने और कनान लौटने का फैसला किया। जैसे ही कहानी सामने आती है, राहेल ने परिवार के देवताओं को चुरा लिया था, उन्हें टेराफिम कहा जाता है, और कौन जानता है कि उसने और क्या लिया था। लेकिन आधी रात में वे वापस यात्रा शुरू करते हैं और लाबान जाग जाता है, और कुछ समय पर उसे पता चला कि वे चले गए हैं, और इसलिए वह उनका पीछा करता है। और इसलिए जब वह उन्हें पाता है, जब वह उन्हें पकड़ता है, तो वह इस बात पर अड़ा होता है कि वे परिवार के देवता तेराफिन को वापस दे दें। प्राचीन दुनिया में पोर्टेबल देवताओं की मिट्टी की छवियां रखना एक अपेक्षाकृत आम प्रथा थी, और उन्हें पारिवारिक देवता कहा जाता था और उन्हें घर में रखा जाता था, इसलिए रेचेल ने उन्हें चुरा लिया था। और इसलिए यह पता चला कि वह लंबी कहानी जिसका मैंने अभी आपको वर्णन किया था, नुजी के प्रकाश में फिर से समझाई गई थी। और कहानी की व्याख्या यह थी कि लाबान ने याकूब को गोद लिया था, और यही कारण था कि राहेल ने टेराफिम चुराया था। टेराफिम थे, हम नुजी से जानते हैं, हमें बताया गया है कि टेराफिम भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज थे, कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास कुल देवताओं का स्वामित्व है, तो आपके पास इस बात का प्रमाण है कि भूमि आपके स्वामित्व में है। खैर, मुझे याद है कि मुझे 1968 में मेरी सेमिनरी कक्षा में पढ़ाया गया था। मुझे याद है कि मुझे वही सिखाया गया था जो मैंने अभी आपको इस पूरी कहानी में बताया था। इसका सार यह था कि नुजी की कहानी नुजी से निकाली गई थी और उत्पत्ति की कहानी पर थोपी गई थी। वास्तव में यह छिद्रों से भरा हुआ था, क्योंकि पाठ में यह कभी नहीं कहा गया है और न ही संकेत दिया गया है कि जैकब को लाबान ने गोद लिया था। इसके अलावा इस बात का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि भले ही जैकब को गोद लिया गया हो, जैसा कि मैं दोहराता हूं कि पाठ में यह नहीं कहा गया है, लेकिन भले ही जैकब को गोद लिया गया हो, हम प्राचीन दुनिया के कानून से जानते हैं कि जैकब को गोद लेने से हटा दिया गया होगा उस क्षण की स्थिति जब लाबान के बच्चे हुए। और पाठ हमें उत्पत्ति में बताता है कि जब लाबान याकूब का पीछा करता है, तो वह अपने बेटों के साथ उसका पीछा करता है। इसलिए अगर उसे गोद भी ले लिया गया होता, तो उस समय तक उसे गोद लेने वाले के रूप में अधिकार से वंचित कर दिया गया होता। इसके अलावा यह तर्क देना कि टेराफिम सबूत हैं, भूमि के स्वामित्व का कानूनी सबूत प्रदान करते हैं, नुजी दस्तावेजों का गलत अर्थ है। यह नुजी गोलियों की एक व्याख्या है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है, और इसलिए मूल रूप से मुझे मदरसा में जो सिखाया गया वह पूरी तरह से गलत निकला। नुजी के तथाकथित गोद लेने के फार्मूले के उदाहरणों के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये सभी तथाकथित समानताएं उन विद्वानों द्वारा बनाई गई थीं जिन्होंने गोलियां पाई और बाइबल पाठ को समझाने के लिए उनका उपयोग किया। यह बिल्कुल वही है जो मैंने आपको हमारे व्याख्यान के पहले दिन के बारे में बताया था, जब मैंने जर्नल ऑफ बाइबिलिकल लिटरेचर में सैमुअल सैंडमेल के लेख का हवाला दिया था। यह पैरेलोमेनिया का मामला है। यह बाइबिल के पन्नों पर कृत्रिम वर्तमान खोज थोप रहा है, और इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि अब हम इस यात्रा को शुरू करने या पुराने बेबीलोनियन काल के साहित्य की ओर इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मेरी ओर से मारी पर हमारे पिछले व्याख्यान में मारी गोलियों का उपयोग करना समानांतर उन्माद का मामला था, पैगंबरवाद की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया वह समानताएं थीं, मतभेद नहीं। मैं इस अवधारणा को लेकर काफी भावुक महसूस करता हूँ कि यदि आप समानताएं बनाने जा रहे हैं तो आपको समानताएं और अंतर दोनों समझाना होगा। तो नुजी में हमारे पास एक व्याख्यात्मक युग था जब अमेरिकी आलोचनात्मक विद्वान बाइबिल को समझाने के लिए जानबूझकर प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों का उपयोग कर रहे थे। अब यह हमें कुछ चीजों की ओर ले जाता है जो मैं कहना चाहता हूँ जैसे ही मैं आपके सामने इस निचले पैराग्राफ की ओर बढ़ता हूँ, जिनमें से एक आज तक है। आज तक हर बार एक टैबलेट या कुछ अन्य होता है। पुरातात्विक खोज हर बार जब हम इसके माध्यम से जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे व्याख्याकार विशेष चश्मा पहनते हैं और अपने विशेष चश्मे के साथ वे पुरातात्विक इतिहास में सबसे हालिया खोजों के लेंस के माध्यम से बाइबल पाठ की व्याख्या करते हैं। मैंने नुजी के साथ ऐसा होते देखा है। बाद में मैंने इसे मारी के साथ घटित होते देखा। मैंने उगारिट के साथ ऐसा होते देखा। हम उगारिट के बारे में कुछ बात करेंगे। यह मृत सागर स्क्रॉल के साथ हुआ। हर बार जब हमें कोई महत्वपूर्ण टैबलेट स्रोत मिलता है तो हम उसे उसके प्राचीन संदर्भ से बाहर निकालते हैं और उसे बाइबल के पाठ पर आरोपित करते हैं। अब मसीह के अभ्यासी अनुयायी के रूप में, या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करने का प्रयास करता है, मैं सावधान रहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन न करूँ और मुझसे सीधे तौर पर कहा गया है कि मैं किसी पर दोष न लगाऊं, लेकिन मुझे संदेह स्वीकार करना चाहिए कि शायद इस प्रकार की चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि पुरातत्वविदों को बाइबल से संबंधित चीजें मिलने पर वे बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। आप जानते हैं, जब सर लियोनार्ड वूली ने उर्मे बाढ़ का भंडार पाया और दुनिया को बताया कि उनके पास बाइबल के साक्ष्य हैं, उनके पास बाइबल के बाढ़ के पुरातात्विक साक्ष्य के सबूत हैं, तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह 20 के दशक में हुआ था। इसने पूरे पश्चिमी विश्व में, पूरे यूरोप में, यहाँ अमेरिका में सुर्खियां बटोरी। वह प्रसिद्ध हो गया। मैं इस बात पर संदेह किए बिना नहीं रह सकता कि जब भी हमें टैबलेट मिलता है तो हम हर बार इसी चीज से गुजरते हैं। इसका एक कारण यह है कि यह पुरातत्वविदों के लिए प्रसिद्ध होने का प्रलोभन है, और मैं विशेष रूप से किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन चूंकि ऐसा हर बार होता है जब हमें कोई टैबलेट मिलता है। मुझे याद है जब पुरातत्वविदों ने 4 दशक पहले या 3 दशक पहले एबला में खुदाई करने वालों को यह कहते हुए पाया था कि उन्हें एबला अभिलेखागार में याफे के नाम के सबूत मिले हैं, तो उन्होंने पाया कि एबला के अभिलेखागार में याफे का नाम है जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीरिया में है। जब सोसाइटी ऑफ बाइबलिकल लिटरेचर पार्टिसिपेंट्स में इसकी घोषणा की गई तो मैं दर्शकों के बीच बैठा था और पूरे कमरे में 5,000 लोग बस इस खबर पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा अंदाजा लगाएं। यह पता चला कि यह बिल्कुल भी याफे का नाम नहीं था, और सचमुच आज कोई भी विश्वास नहीं करता है कि याफे का उल्लेख एबला गोलियों में किया गया है। तो नुजी के बारे में इस टिप्पणी में मैं जो बातें कहना चाहूंगा उनमें से एक 1925 की है, जब हम अभी भी पूरी बाइबल की दुनिया पर प्रकाश डालने के लिए एक गतिशील टॉर्च की तरह प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों का उपयोग करने के वास्तविक संकट में थे, और इसलिए यह समस्या का हिस्सा है। समस्या का दूसरा भाग बहुत कम दिखाई देता है, और मुझे आशा है कि मैं आपको इस पर खोऊंगा या बोर नहीं करूंगा, लेकिन इस पैराग्राफ में मैंने आपको 1970 से 1980 के दशकों तक व्यावहारिक रूप से सभी छात्रवृत्तियों के उपयोग को अस्वीकार करने का उल्लेख किया है। उत्पत्ति में घटनाओं की ऐतिहासिकता को साबित करने में मदद करने के लिए नुजी गोलियों की, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती पितृसत्तात्मक आख्यानों की ऐतिहासिकता पर थॉमस थॉम्पसन का काम था। तो दोबारा याद करने के लिए मुझे यह समझाना चाहिए कि 1920 से 1970 के दशक तक हम एक ऐसे युग में थे जब पश्चिमी विद्वता और पश्चिमी से मेरा मतलब उत्तरी अमेरिकी बाइबल पुरातत्व कहलाने वाली चीज में उलझा हुआ था। बाइबल की व्याख्या करना पुरातत्व का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यदि आप 4000 गोलियां देख रहे हैं और आपकी धारणा है कि इन गोलियों का उपयोग बाइबल पर प्रकाश डालने के लिए किया जाएगा, तो आश्चर्य की बात है कि इस तरह की धारणा किसी व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि आपकी धारणा यह है कि नुजी गोलियों के प्राथमिक मूल्यों में से एक बाइबल पर प्रकाश डालना है, जबकि वास्तव में नुजी या मारिया उगारिट का प्राथमिक कार्य गोलियों की व्याख्या करने का प्राथमिक कार्य लोगों पर प्रकाश डालना है उस शहर का जहां गोलियां मौजूद थीं। इसलिए जब हम इस पूरे विषय क्षेत्र को देखते हैं तो मैं जो कहूंगा वह यह है कि हमारे पास प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों के इतिहास में एक अद्वितीय व्याख्यात्मक खिड़की है। जब उत्तर अमेरिकी विद्वान बाइबल को समझाने के लिए इन प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों का उपयोग करने में रुचि रखते थे, तो अगर मैं आपको चर्च के इतिहास की 15 मिनट की यात्रा पर ले जा सकूं, तो शायद मैं आपको समझा सकता हूं कि यह अजीब बात क्यों हुई। जैसे जैसे सुधार काल यूरोप पर अपने प्रभाव के अंत की ओर बढ़ा, इसने एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी जिसने इतिहास और विज्ञान के लिए जगह की मांग की। दूसरे शब्दों में, धर्मशास्त्र अपने दम पर खड़ा नहीं था। धर्मशास्त्र को इतिहास के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। खैर, इसका मतलब यह है कि लोग स्वचालित रूप से बाइबल पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाइबल शायद सटीक साबित होनी चाहिए, और इसलिए सुधार के बाद सदियों तक विद्वता रूढ़िवाद से दूर जाने लगी और इसने धर्म ग्रंथों को अपनी ही श्रेणी में स्थापित कर दिया। और जबकि इसे अब भी बड़े पैमाने पर एक दैवीय पुस्तक माना जाता था, अब यह ऐतिहासिक साक्ष्य की जांच के अंतर्गत आ गया। और फिर 19वीं सदी के मध्य में इतिहास की महानतम घटनाओं में से एक घटी। चार्ल्स डार्विन ने समुद्र के पार अपनी यात्रा की और उन यात्राओं में उन्हें वैज्ञानिक घटनाओं के प्रमाण के रूप में जो कुछ मिला उसे विकासवाद कहा गया। ऐसा करने में डार्विन ने दुनिया के सामने बाइबल के रिकॉर्ड के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने अंततः दुनिया को ईश्वर का एक विकल्प दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्याप्त लंबी अवधि को देखते हुए जीवन स्वयं रसायनों से उत्पन्न हो सकता है, जीवन स्वयं उभर सकता है और समय की एक लंबी अवधि में जीवन विविधता में बदल सकता है। जब तक कि पर्याप्त लंबी अवधि को देखते हुए आप वैसा जीवन नहीं पा सकते जैसा हम आज जानते हैं। अब कभी कभी ईसाइयों ने डार्विन के उस दृष्टिकोण को अपनाया है और वे उसे स्वीकार करते हैं जिसे वे आस्तिक विकास कहते हैं, अर्थात उस प्रकार का विकास हुआ लेकिन भगवान ने इसे नियंत्रित किया। कभी कभी ईसाई डार्विनियन विकासवाद की पूरी अवधारणा को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित डार्विन के सिद्धांतों का ईसाई धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने एक वैकल्पिक प्रस्ताव लाकर उत्पत्ति के लिए बाइबल के प्रस्तावों पर दरवाजा बंद कर दिया। उत्पत्ति, इसके परिणामस्वरूप डार्विन के बाद की सदी में ईसाई धर्म डार्विन की शिक्षाओं से नाटकीय रूप से इस हद तक प्रभावित हुआ कि ईसाई धर्म का व्यापक परित्याग हो गया। 19वीं सदी के अंत तक, जिसे हम 1900 कहते हैं, वस्तुतः हर चर्च बाइबल के वैज्ञानिक विकल्प की संभावनाओं से नाटकीय रूप से प्रभावित था। वस्तुतः सभी ईसाई संगठनों और स्कूलों ने विशेष रूप से रूढ़िवादी ईसाई धर्म से बाइबल की उत्पत्ति के वैध दस्तावेज के रूप में इनकार करने के लिए तेजी से प्रस्थान शुरू कर दिया, और इसलिए इसके परिणामस्वरूप जर्मन विद्वता का अपना बड़ा प्रभाव पड़ने लगा और ऐसा प्रमुख विद्वानों ग्राफ कीनन और वेलहाउजेन के नाम पर हुआ। अब वेलहाउसेन, जूलियस वेलहाउसेन ने जो किया वह यह था कि वह जर्मन विद्वानों के एक समूह का हिस्सा था जो डार्विन के सिद्धांतों को लेने और उन्हें बाइबल की दुनिया में लागू करने में सक्षम थे। और वेलहाउजेन ग्राफ और कीनन ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि जिस प्रकार मानव जाति और इस पृथ्वी पर सभी जीवन अनंत काल में सरल जीवों से आधुनिक जटिल जीवों में विकसित हुए जो आज हम हैं, उसी प्रकार बाइबल की दुनिया भी इसी प्रकार के विकास से गुजरी। यह विकास उन सिद्धांतों का पालन करता है जो डार्विन ने हमें सिखाए थे, अर्थात सरल से जटिल की ओर। वेलहाउजेन और जर्मन विद्वानों ने विशेष रूप से दुनिया को सिखाया कि जिस तरह जीवन सबसे सरल रूपों से जटिल रूपों में विकसित हुआ, उसी तरह धर्म ने भी सरल से जटिल तक एक समान पैटर्न का पालन किया। और इसलिए उन्होंने एक साहित्यिक विकास का सृजन किया जिसे JDP सिद्धांत कहा जाने लगा। और जे का अर्थ दिव्य नाम जफ है। आपको याद होगा कि जर्मन में जे और वाय, जर्मन में जे का उच्चारण वाय होता है, इससे हमें जाह्वेह मिलता है। आपकी अंग्रेजी बाइबल में, जैसा कि आप इसे यहोवा के नाम से जानते हैं, जाफ असली नाम है। कि बाइबल में ईश्वरीय नाम एलोहिम का प्रतिनिधित्व करता है। डी ड्यूटेरोनोमिस्ट के बराबर है, जिसे क्रिटिकल थ्योरी में ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक में सबसे अच्छा दर्शाया गया है। और पी पुरोहित का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए ग्राफ और कीनान और वेलहाउजेन ने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया ताकि जाह्वेहिस्ट, जो एक प्रकार का सरल आदिम धर्मशास्त्री था, जाह्वेहिस्ट ने अपना काम लगभग 10वीं से 9वीं शताब्दी में किया। ये वेलहाउजेन प्रणाली में संपादक थे, वे लेखक नहीं थे। एलोहिस्ट लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ड्यूटेरोनोमिस्ट 7वें से 6वें तक है और फिर यह 6वें से 5वें तक है। अब याद रखें कि 5वीं शताब्दी 500 से 400 के समान है, उस प्रकार की बात। तो उन्होंने जो किया वह यह है कि उन्होंने धर्म का विकासवादी विकास किया, और मैं जरूरी नहीं कि इसे समझाने की कोशिश में बहुत समय बिताऊंगा, लेकिन इस जर्मन छात्रवृत्ति, आलोचनात्मक छात्रवृत्ति के परिणाम और प्रभाव से यह निष्कर्ष निकला कि वहां पुराने नियम के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत कम था। इसके परिणामस्वरूप धर्म के प्रति यह विकासवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। इसका प्रभाव क्या हुआ? जब तक किसी कहानी की ऐतिहासिक वास्तविकता को साबित करने के लिए प्राचीन निकट पूर्वी सामग्री का हवाला नहीं दिया जा सकता, तब तक बाइबल में कहानी को सच नहीं माना जाता था। मान लिया गया कि यह सच नहीं है। खैर, इसने एक संदेह पैदा किया जिसने पश्चिमी दुनिया को इतना प्रभावित किया कि चर्चों को छोड़कर विद्वान दुनिया ने इसे पूरी तरह से अपना लिया। अब यह एक बहुत ही जटिल चीज है, और मुझे आज आपको यह बताना चाहिए, बहुत कम विद्वान कहेंगे कि वे वेलहाउजेन द्वारा प्रस्तावित इस कठोर सूत्र पर विश्वास करते हैं। लेकिन वही विचार आज भी उतना ही प्रचलित है जितना उस समय आलोचनात्मक विद्वता में था, अर्थात धर्म का विकासवादी विकास हुआ जिसने बाइबल की दुनिया को जन्म दिया। अब आप सोच रहे हैं कि नुजी चर्चा में यह कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कल्पना करने का प्रयास करें कि जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध तक इस प्रणाली ने पूरे पश्चिमी विश्व में विजय प्राप्त कर ली थी, चर्चों को छोड़कर लगभग हर जगह। अमेरिका के महान विद्यालयों, हार्वर्ड, येल और दर्जनों अन्य विद्यालयों, जिनकी स्थापना ईसाई परंपरा में हुई थी, ने ईसाई परंपरा को त्याग दिया। अब यह एक परित्याग है जो पुराने नियम में चला गया, जो पहले सुधार में शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के समय तक विद्वत्ता ने पुराने नियम के अधिकांश भाग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमने इसे खत्म कर दिया है तो मुझे इसे मिटा देना चाहिए, और मैं आपको W.F. अल्ब्राइट, विलियम फ्रैंकलिन अल्ब्राइट नामक एक उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। अल्ब्राइट निश्चित रूप से एक रूढ़िवादी ईसाई नहीं थे, हालांकि अल्ब्राइट का पालन पोषण एक रूढ़िवादी ईसाई घर में हुआ था। उनका पालन पोषण दक्षिण अमेरिका में उनके माता पिता के घर में हुआ, जो मिशनरी थे। अल्ब्राइट ने घर छोड़ दिया, जैसा कि कई लोग करते हैं, और कॉलेज चले गए। और जब वह कॉलेज गया, तो निश्चित रूप से उसे उस परंपरा में शिक्षा मिली जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर रखी थी, धर्म की व्याख्या के लिए विकासवादी दृष्टिकोण। और इस प्रकार अल्ब्राइट ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और वह अपने युग के प्रमुख पुरातत्वविद बन गए। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि 20वीं सदी में कोई भी वह पिछली सदी होगी, मुझे नहीं लगता कि पिछली सदी में किसी ने भी विद्वता में उतनी लंबी छाया डाली होगी जितनी अल्ब्राइट ने डाली थी। वह यकीनन पिछली शताब्दी के प्रमुख धार्मिक विद्वान या धार्मिक सामग्रियों के प्रमुख विद्वान थे, और एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में अल्ब्राइट को बार बार ऐसी सामग्री मिलने लगी जिससे उन्हें संक्षेप में यह कहना पड़ा कि पुराने नियम के प्रति वेलहौसियन रवैया बहुत संदेहपूर्ण है। उनके पुरातात्विक कार्य ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि बाइबल इसकी दुनिया में काफी हद तक फिट बैठती है। अब क्योंकि मैं इसे कक्षा में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि यह प्रवृत्ति है, इसलिए मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट, अल्ब्राइट जहां तक हम जानते हैं एक अभ्यास करने वाला ईसाई नहीं था, वह एक महान विद्वान थे। लेकिन अल्ब्राइट का मानना था कि प्राचीन निकट पूर्वी सामग्री बाइबल की कहानी के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध दर्शाती है, और उनके प्रभाव में अल्ब्राइट जो एक शानदार विद्वान हैं के सैकड़ों छात्र थे जो अपनी विद्वता की दुनिया में चले गए और उन्होंने प्राचीन निकट पूर्वी सामग्रियों का उपयोग किया जिसे उस समय बाइबल पुरातत्व कहा जाता था। तो उद्देश्य पुरातत्व के प्रमुख उद्देश्यों में से एक बाइबल पर प्रकाश डालना था। खैर, ऐसा लगभग आधी शताब्दी तक होता रहा। 1970 के दशक में मैंने थॉमस थॉम्पसन की किताब पढ़ी। यह विद्वता का एक शानदार नमूना है। यह ऐतिहासिकता के प्रति काफी आलोचनात्मक है। उन्होंने अपनी पुस्तक का शीर्षक द हिस्टोरिसिटी ऑफ द पैट्रियार्कल नैरेटिव्स रखा और उनका निष्कर्ष यह था कि इसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है, लेकिन यह सबूतों के माध्यम से एक शक्तिशाली विद्वतापूर्ण यात्रा है। और मूल रूप से थॉम्पसन ने अपनी पुस्तक में जो दिखाया वह यह है कि जिसे सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है वह लगभग हमेशा सबूत नहीं है, और इसलिए इसने एक बिल्कुल नए युग का नेतृत्व किया, एक ऐसा युग जिसमें हम आज भी हैं, जिसे अतिसूक्ष्मवाद कहा जाता है। न्यूनतमवाद को तथाकथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी थीसिस यह है कि बाइबल की दुनिया और बाइबल के बीच केवल न्यूनतम बातचीत होती है। इससे नुजी सामग्रियों को देखने के हमारे नजरिए में पूर्ण परिवर्तन आ गया, और नुजी के इस पूरे क्षेत्र में अच्छे प्रोफेसरों द्वारा मुझे मदरसा में जो पढ़ाया गया वह गलत निकला। ठीक है, तो मैं आपको जो प्रस्ताव दूंगा वह यह है कि हमें इसे आते हुए देखना चाहिए था, क्योंकि कुछ संकेतों से यह नियंत्रित होना चाहिए था कि हम नुजी सामग्रियों का उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा लग रहा है कि नुजी गलत जगह पर है। ठीक है, इसलिए यदि आप यहाँ जागरोस पर्वत क्षेत्र की ओर देखें तो देखें कि नुजी उत्पत्ति की दुनिया से कितनी दूर है। यदि मुझे बस यह अनुमान लगाना हो कि यह कितने मील की दूरी तय करती है, तो मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक का पूरा रास्ता 800 शायद 1000 मील है। ऐसी समानताएं होने के लिए नुजी वास्तव में गलत जगह पर है। तो वास्तव में ऐसा होने के लिए यह सबसे अच्छी जगह नहीं है। दूसरे, नुजी गलत समयावधि है। अब हम जो जानते हैं वह यह है कि नुजी गोलियां लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थीं। ठीक है, यदि रूढ़िवादी डेटिंग के अनुसार इब्राहिम लगभग 2100 ईसा पूर्व का है, तो इसमें 600 वर्ष का समय हटा दिया गया है। भले ही हम साक्ष्य के लिए बाद की तारीख लें, जो कि कुछ इंजील विद्वानों का मानना है, अर्थात अब्राहम 18वीं से 17वीं शताब्दी का व्यक्ति रहा होगा, फिर भी इतनी करीबी समानताएं होने में अभी भी सैकड़ों साल लगेंगे। यह गलत समयावधि है। तीसरा, यह गलत जनसंख्या है। इब्री यहूदी हैं। पूरे मेसोपोटामिया बेसिन में हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो यहूदी हैं, लेकिन नुजी आबादी सामी नहीं थी। यह काफी हद तक हुरियन था। हुरियन या शायद जिसे बाइबल होराइट्स कहती है, हुरियन यहूदी नहीं थे और उन्होंने हमेशा सेमाइट्स के रीति रिवाजों को नहीं अपनाया, और इसलिए नुजी में जो प्रथाएं की जा रही थीं, वे उन लोगों की प्रथाएं थीं जो पुराने बेबीलोनियन दुनिया की संस्कृति का पालन नहीं कर रहे थे, जहां हमारे पास बाइबल की दुनिया में समानताएं हैं। तो यह हमें जो बताता है वह केवल स्थान, समय और जनसंख्या जैसी साधारण चीजों को देखना है, जिससे हमें कम से कम इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि हम इन सामग्रियों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी और कई अन्य लोगों की विद्वता में जो देखा है वह बहुत सरल भी है। गलत पूर्वधारणा अक्सर गलत निष्कर्ष पर ले जाती है। इसलिए जैसे ही हम नुजी सामग्री पर लौटते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से गोद लेने का नंबर एक विषय समझाऊंगा, जो गोद लेने की अवधारणा है। यह एकमात्र प्रमुख चीज नहीं है, बल्कि यह नंबर एक चीज है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं गोद लेने के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इससे मुझे बाइबल में गोद लेने को समझने में कैसे मदद मिलती है। मूसा ने हमारे लिए कुछ कानून छोड़े जो बताते हैं कि गोद लेना कैसे काम करता है। पुराने नियम की कहानियों में हमारे पास दत्तक ग्रहण है। प्राचीन दुनिया में गोद लेना एक आम बात थी क्योंकि लोग इतनी जल्दी मर जाते थे। यदि औसतन एक व्यक्ति की मृत्यु 40 वर्ष की आयु के आसपास होती है तो उसके बच्चे शायद ही 20 वर्ष की आयु के प्रारंभ में होंगे। इसलिए प्राचीन दुनिया में यह असामान्य नहीं था। और हम जानते हैं वैसे जब हमें रोमन काल जैसे बड़े पैमाने पर प्रलेखित अवधि मिलती है तो हम जानते हैं कि गोद लेना एक बेहद आम प्रथा थी। लेकिन अगर आपने गलत अनुमान लगा लिया है तो यह उन दूरबीनों से देखने जैसा है जो फोकस से बाहर हैं। तो यहां समस्या है। नुजी स्वयं गोद लेने से उतना नहीं निपट रही है जितना कि वह जिसे काल्पनिक गोद लेना कहा जाता है उससे निपट रही है। अब आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति कैसी होती है। छात्रवृत्ति कभी भी एक सरल शब्द का उपयोग नहीं करेगी जब वह एक अस्पष्ट शब्द का उपयोग कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं नुजी में नहीं आया तब तक मैंने अपने जीवन में कभी भी काल्पनिक शब्द का उपयोग किया था। मैं काल्पनिक कह सकता था, लेकिन काल्पनिक विद्वत्तापूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसे काल्पनिक गोद लेना कहते हैं। खैर, काल्पनिक गोद लेने का सीधा सा मतलब है काल्पनिक गोद लेना। यह वास्तविक दत्तक ग्रहण नहीं था। यह पता चला है कि नुजी की दुनिया में मेसोपोटामिया की पूरी संस्कृति में, जो पुराने बेबीलोन के बाद की संस्कृति थी, उस संस्कृति में जमीन बेचना गैरकानूनी था। तो इससे पता चला कि गैर यहूदी हुरियनों ने कानून के इर्द गिर्द एक रास्ता बनाया, और कानून का तरीका यह था कि अगर अमुक व्यक्ति मुझे एक्स राशि का भुगतान करे तो मैं अमुक व्यक्ति को यहाँ गोद ले लूंगा और फिर वह मेरा बेटा बन जाएगा और वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यह एक कानूनी छल था। उदाहरण के लिए हम तेहिप्टिला नाम के एक व्यक्ति को जानते हैं जिसे 48 बार गोद लिया गया था। स्पष्टतः उसे गोद नहीं लिया गया था। जाहिर है यह कानून से बचने का एक तरीका है। इसे हम काल्पनिक गोद लेना कहते हैं। इसलिए इसे शाब्दिक रूप से अपनाने की व्याख्या करना बेकार है क्योंकि यह पुराने नियम के विभिन्न पृष्ठों पर पाया जाता है। तो इसके परिणामस्वरूप अंततः अल्ब्राइट के संपूर्ण दृष्टिकोण का परित्याग हुआ जिसमें पुरातत्व का उद्देश्य बाइबल पर प्रकाश डालना था, जिसे अब वे निकट पूर्वी पुरातत्व कहते हैं, जहां यह लगभग बदल गया है। दूसरा चरम जब पेंडुलम ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। तो मैं इस व्याख्यान को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को सावधान करना चाहूंगा कि हमें प्रत्येक टैबलेट को उन लोगों के संदर्भ में ठीक से पढ़ने की जरूरत है जिनकी संस्कृति में वे टैबलेट लिखे गए थे। यानी पुरातत्व का प्राथमिक उद्देश्य बाइबल की व्याख्या करने वाली चीजों को ढूंढना नहीं है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पुरातत्व का उद्देश्य उस समय की दुनिया को पुन पेश करना है, उस दुनिया के बारे में हमारी समझ को पुन पेश करना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम जो देख सकते हैं वह एक बहुत ही सरल व्याख्यात्मक सिद्धांत है, जो यह है कि यदि आपने गलत अनुमान लगाया है तो संभावना वास्तव में अच्छी है कि आप गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। नुजी एक प्रमुख मामला है। उत्तरी अमेरिका में वस्तुतः हर कोई अल्ब्राइटियन दृष्टिकोण से सहमत था। 1970 के दशक के 40 साल बाद उत्पत्ति की पुस्तक पर नुजी के दस्तावेजों के प्रभाव के बारे में हमें जो सिखाया गया था उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए मैं यह व्याख्यान यह कहकर समाप्त करूंगा कि हमें पृष्ठभूमि में सावधान रहना होगा कि जैसे ही हम प्राचीन दुनिया की सामग्री को देखते हैं, हम पहले इसे यह देखने के विचार से देखते हैं कि यह उस दुनिया की व्याख्या कैसे करता है जिसमें वे गोलियां मौजूद थीं। इससे पहले कि हम उस दुनिया का विस्तार करने और बाइबल पर प्रकाश डालने की कोशिश शुरू करें। इसलिए जब हम बाइबल की पृष्ठभूमियों को देखते हैं तो यही हमारी सावधानी है, और यह सावधानी सत्य की विशेषता है। पृष्ठभूमि को ठीक से काम करने के लिए हमें समानताएं और अंतर दोनों को स्पष्ट करना होगा। इसके साथ हम इस व्याख्यान को समाप्त कर सकते हैं और जानकारी के दूसरे पुराने बेबीलोनियाई स्रोत की ओर बढ़ सकते हैं। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 11 है नुजी।